आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी के कार्यक्रम पर 8 जनवरी 2026 की शाम है और घड़ी में 5 बजते ही मैं भव्या पांडे आ गई हूँ आपको खबरों का रुख कराने। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और आज के कार्यक्रम में हमारा साथ बना रहेगा। चलिए आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और हुईहुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है। तो अगले एक घंटे में सबसे पहले हम सुनेंगे आज के ताजा समाचार। आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो यानी ABS ने नवंबर की वार्षिक मुद्रास्फीति 3.4% दर्ज की है। तो क्या इससे कीमतों पर दबाव कम हुआ है और फरवरी में RBI की ब्याज दरों पर असर कैसा पड़ेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में गर्मियां बहुत ज्यादा तेज हो सकती हैं और गर्म होते मौसम के साथ हीट वेव और ज्यादा तेज होने की उम्मीद की जा रही है। तो हीट वेव के समय कैसे सुरक्षित रहें और मौसम से जुड़ी अन्य जानकारी आज मैं दो भागों में आप तक लेकर आऊंगी। इसके अलावा आज मैं आपको मिलवाने वाली हूं NSW हिंदी टॉपर्स से। न्यू साउथ वेल्स के HSC रिजल्ट्स आ चुके हैं जिसमें कि धानी और सानवी ने हिंदी में टॉप किया है, तो उनसे हमने हाल ही में कुछ खास बातचीत की है जो आज हम सुनेंगे। आपको बता दूं कि आज मेरे पास कोई खास सवाल नहीं है, लेकिन शो से संबंधित कोई भी संदेश या सुझाव आपके पास हो तो आप मुझे 0439-799-767 पर भेज सकते हैं। कोई भी सवाल हो या मन में कोई बात हो तो अपना संदेश मुझ तक जरूर भेजें, क्योंकि मुझे आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। और भी खूब सारी बातें हम करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले सुनते हैं कि देश और दुनिया में आखिर क्या चल रहा है। प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। फेडरल पुलिस मेलबर्न में एक सिख मंदिर में घुसपैठ करने और लगभग $1500 नकद वाली दान पेटी चोरी करने वाले व्यक्तियों की तलाश में है। आपको बता दूं कि ये चोरी मेलबर्न के उत्तर में कैंपबेल्ट फील्ड स्थित श्री गुरु रविदास सभा मंदिर में 29 दिसंबर की शाम हुई। पुलिस ने घटना का CCTV फुटेज जारी कर दिया है। एक व्यक्ति ने काले हुडी, दस्ताने और नारंगी फेस मास्क पहनकर भवन में जबरदस्ती प्रवेश किया था। इस वीडियो में एक काले रंग का हुडी पहना व्यक्ति दस्ताने और नारंगी फेस मास्क पहनकर भवन में जबरदस्ती प्रवेश करता नजर आ रहा है। वहीं फेडरल विपक्षी नेता सूजन ली लगातार ये मांग कर रही हैं कि बढ़ती यहूदी विरोधी घटनाओं के मद्देनजर तुरंत एक कॉमनवेल्थ रॉयल कमीशन की स्थापना की जाए। उनका कहना है कि इस जांच में एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं का भी अध्ययन शामिल होना चाहिए ताकि भविष्य में आतंकवाद की घटनाओं को रोका जा सके। वहीं अग्निशमन अधिकारियों का कहना है कि विक्टोरिया में कल यानी 9 जनवरी के लिए पूरी तरह से आग प्रतिबंध लागू हो जाएगा। राज्य के कुछ हिस्सों विशेषकर मैली, उत्तरी ग्रामीण और उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य क्षेत्रों में चरम गर्मी और आग का खतरा बढ़ रहा है। स्टेट कंट्रोल सेंटर से डेविड न्यूजेंट का कहना है कि ये खतरा जल्द ही और फैलने वाला है। राज्य में फिलहाल 2 मुख्य जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की टीम काम कर रही है जिसमें ग्राउंड क्रू और एयरक्राफ्ट्स दोनों शामिल हैं। एक नई रिसर्च से पता चला है कि कैनबेरा के अस्पतालों के आपातकालीन विभाग में हर 15 में से एक विजिट अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड के कारण होता है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बढ़ेंगे, विशेषकर अत्यधिक गर्म दिन स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए बड़ा कारण बन सकते हैं। ब्रिटेन ने खुलासा किया है कि उसने अमरीका को दो तेल टैंकरों में से एक जब्त करने में सहायता दी, जिन पर वेनेजुएला के तेल निर्यात पर रोक और ईरान पर प्रतिबंध को चकमा देने का आरोप था। इस टैंकर का नाम बेला वन था और इस पर रूस का झंडा बना हुआ था, जिसे कि उत्तरी अटलांटिक में जब्त कर लिया गया। अमेरिका इसे दो हफ्तों से ट्रैक कर रहा था। ऐसे में ब्रिटिश कर्मियों ने इस जहाज पर चढ़ाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ब्रिटिश सैन्य ठिकानों, नेवी और एयरफोर्स कर्मियों ने ऑपरेशन के अन्य हिस्सों में भाग लिया है। ऐसे में ब्रिटिश रक्षा सचिव जॉन हीली ने कहा है कि ये कार्रवाई शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने कहा है कि वे ग्रीनलैंड खरीदने पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में फिर से इस संभावना को बढ़ाया है कि अमेरिका इस द्वीप पर नियंत्रण कर सकता है। चिंता जताई गई है कि अमेरिका की हाल ही में वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन में भागीदारी ग्रीनलैंड पर अमेरिका की कार्रवाई के लिए किसी तरह का मॉडल या प्रेरणा बन सकती है। बात करें भारत की, तो दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैस ए इलाही मस्जिद के पास अवैध ढांचा गिराए जाने के दौरान हुए पथराव मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर पथराव करने वाले 30 लोगों की पहचान कर ली है। इन लोगों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही थीं। आपको बता दूं कि पथराव की ये घटना मंगलवार रात की है, जब अवैध ढांचा हटाने के दौरान उपद्रव शुरू हो गया। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमने सुना आज का न्यूज फ्लैश। आइए अब बात करते हैं इन्फ्लेशन पर। तो ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो यानी ABS ने नवंबर के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति 3.4 दर्ज की है। क्या इस कमी का मतलब ये है कि कीमतों पर दबाव कम हुआ है और फरवरी में RBI की बैठक में ब्याज दरों पर असर पड़ सकता है? इस अंश में हम अर्थशास्त्री देविका शिवदेकर के साथ जुड़ेंगे, जो बता रही हैं कि मुद्रास्फीति की वर्तमान दर ब्याज दरों पर कितना प्रभाव डाल सकती है।
नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने नवंबर में रिकॉर्ड की गई वार्षिक मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन रेट दर की नए आंकड़े जारी कर दिए हैं और इसमें इन्फ्लेशन यानी मुद्रा स्फीति अब धीमी होकर 3.4% हो गई है। ये नए आंकड़े फरवरी में होने वाले रिजर्व बैंक की अगली बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने पर प्रभाव डाल सकती हैं। ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर तक के 12 महीनों में कीमतों पर दबाव कम हुआ है, जो अक्टूबर में दर्ज की गई 3.8% की वृद्धि से कम है। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद थी कि नवंबर तक के 12 महीनों के लिए मुद्रास्फीति दर 3.6% रहेगी, जबकि पिछले महीने ये उम्मीद से अधिक 3.8% रही थी। कुछ इकोनॉमिस्टों का मानना था कि 2026 में कई बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि RBA की गवर्नर मिशेल बुलॉक ने संकेत दिया था कि 2026 की पहली छमाही में ब्याज दरें कम नहीं होंगी। दिसंबर में बैंक ने ब्याज दरों को 3.6% पर स्थिर रखा था। ABS के इस नए आंकड़े को और बेहतर समझेंगे हम इकोनॉमिस्ट देविका शिवदेकर से, जो बता रही हैं ये आंकड़े इंटरेस्ट रेट पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं।
तो आज के जो आंकड़े हैं वो बेसिकली नवंबर 2025 का रीडिंग है फॉर इन्फ्लेशन। ऑफ कोर्स क्योंकि दिसंबर में शटडाउन पीरियड रहता है तो डेटा रिलीज अगेन पिक्स अप फ्रॉम जनवरी। तो हमने देखा कि महंगाई, इन्फ्लेशन विच इज महंगाई, 3.8% थी अक्टूबर में एंड वो थोड़ी कम हुई है टू 3.4%। एंड अंडरलाइन इन्फ्लेशन विच इज द ट्रिम्ड मीन, तो अगर सिंप्लीफाई करना है अंडरलाइन इन्फ्लेशन या ट्रिम्ड मीन इन्फ्लेशन को, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, CPI बास्केट में देर आर 82 कॉम्पोनेंट्स और यूजुअली मोस्ट ऑफ देम आर वॉलेटाइल, बिकॉज क्या होता है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है, कई बार उसके वजह से प्राइस मूवमेंट्स ऊपर नीचे जाते रहते हैं। वेरी गुड एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे जैसे अलग अलग स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी रिबेट्स आते हैं तो प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं। तो ट्रिम्ड मीन क्या करता है कि ये जो फ्लक्चुएटिंग कॉम्पोनेंट्स है उनको निकाल देता है। तो यू ओनली लुक एट द कोर इन्फ्लेशन कंपोनेंट्स। तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट्स है वो बिल्कुल किसी भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन से या किसी भी तरह के डिस्काउंट सब्सिडी से इन्फ्लुएंस नहीं होते, उसको ट्रिम्ड मीन कहते हैं। तो जो ओवरऑल इन्फ्लेशन नंबर था वो 3.4 आया नवंबर में, और ट्रिम्ड मीन इन्फ्लेशन उससे भी कम आया टू 3.2%। तो ब्रॉडली अगर हम देखेंगे कंपेयरिंग इट टू अक्टूबर, ग्रेजुअली प्राइस प्रेशर्स कूल ऑफ हो रहे हैं। वी कैन सी दैट महंगाई धीरे धीरे कम हो रही है, बट द कैच हियर इज कि ओवरऑल इन्फ्लेशन भले ही कम हो रहा हो, बट द स्पीड विथ विच इट इज डिक्लाइनिंग वो अभी भी इट्स स्टिल स्लोअर देन हाउ द आरबीआई वुड लाइक टू सी इट। तो हाँ, मतलब खुशी की बात है कि कम आ रहा है, कम हो रहा है, बट बहुत धीरे से कम हो रहा है। तो आरबीआई स्टिल नॉट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट दिस रीडिंग, एंड दे वुड प्रॉब्ली वो ये सोचेंगे कि नहीं यार अभी थोड़ा काम करना बाकी है, वी स्टिल नीड टू होल्ड ऑन टू द इंटरेस्ट रेट्स टू सी कि और क्या होता है और महंगाई और कितने जल्दी हमारे टारगेट बैंड में आ सकती है। सो आरबीआई का टारगेट बैंड इज 2% to 3%।
अच्छा जी।
सो हाँ, तो 3.4% एंड 3.2% जो हमारे रीडिंग्स है वो फिर भी वो बैंड के अपर एंड के बाहर है।
अच्छा।
तो आरबीआई की कोशिश यही रहेगी कि 2% to 3% के अंदर उसे लाए, एंड तब तक आई थिंक दे वुड स्टिल लुक एट द डेटा वेरी क्लोजली, एंड शायद वो फरवरी की मीटिंग में कुछ ना करे एंड दे माइट जस्ट स्टे ऑन होल्ड।
जी, और फरवरी में जो ये आरबीआई की बैठक होगी जिसमें इंटरेस्ट रेट कम की जाए या नहीं, तो ये नए आंकड़े किस प्रकार प्रभाव डाल सकते हैं इस निर्णय पर?
मेरा ये मानना है कि इन्फ्लेशन, देखो दो चीजें आरबीआई बहुत करीबी से देखता है। पहली बात महंगाई, जो इन्फ्लेशन आज हमने देखा 3.4% एंड 3.2%, और जो सेकंड मेजर है वो है लेबर मार्केट।
जी।
तो लेबर मार्केट में आरबीआई देखता है बेरोजगारी, वो देखते हैं कि पॉपुलेशन टू एम्प्लॉयमेंट रेशियो कितना है, अंडर यूटिलाइजेशन रेट कितना है, माने कि ऐसे लोग कितने हैं मार्केट में कि जो जॉब करना चाहते हैं बट उन्हें मिल नहीं रहा है जॉब, एंड ऐसे भी वो वेकेंसी रेट भी देखते हैं। वेकेंसी रेट इसेंशियली इज फ्रॉम द साइड ऑफ बिजनेसेस कि कितने बिजनेसेस एक्चुअली अभी भी मार्केट में जा रहे हैं और लोगों को ढूंढ रहे हैं।
अच्छा।
तो द रीजन आरबीआई इन दोनों चीजों को देखता है, इसकी वजह ये है कि अगर लेबर मार्केट बहुत टाइट रहा इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों के पास जॉब्स है, इसका मतलब है बहुत सारे लोगों के पास आमदनी है। जब बहुत लोगों के पास आमदनी होती है तो बहुत सारे लोग पैसे खर्च कर सकते हैं। जब लोगों के पास वो क्षमता रहती है कि वो ज्यादा पैसे खर्च करें, एंड अगर वो मार्केट में जाके ज्यादा पैसे खर्च करते हैं तो डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस हो जाता है इन द मार्केट, एंड ऑल ऑफ दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। तो बेसिकली जितना टाइट लेबर मार्केट रहेगा, जितने ज्यादा लोगों के पास जॉब्स रहेंगे, जितने ज्यादा लोगों के पास आमदनी रहेगी, उतनी वो रिस्क है कि जो महंगाई है वो भी ऊपर ही रहे, वो जल्दी से नीचे ना आए। इसलिए आरबीआई क्या करता है कि वो डोमेस्टिक मार्केट में महंगाई भी देखता है और बेरोजगारी भी देखता है। सो आइडियली दे वॉन्ट टू रीच अ लेवल जहां पे ना बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और ना महंगाई बहुत ज्यादा है।
जी,
दैट इज देयर स्वीट स्पॉट।
तो अभी कुछ और देखना भी बाकी है। इन्फ्लेशन रेट तो हमने अब देख लिया, अभी क्या और देखना बाकी है जिससे ये डिसीजन होगा?
यही देखेंगे वो। जी, अभी वो यही देखेंगे, अभी वो बेरोजगारी का डेटा देखेंगे जो टुवर्ड द एंड ऑफ जनवरी, जी वो 22 जनवरी को रिलीज होगा वो डेटा, एंड देन द आरबीआई विल मेक इट्स डिसीजन कि जी।
देविका, ये भी बताइए कि ये जो इन्फ्लेशन रेट अभी 3.4 का जो बता रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड रेट से थोड़ा हाई है, लेकिन क्या चीजें हैं जो इसको ऊपर की तरफ ले जा रही हैं? कौन से ऐसे कंपोनेंट्स, आप कंपोनेंट्स की बात कर रही हैं, तो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इसको पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ?
हाँ, तो एक्चुअली ये जो डेटा था आज का वो काफी मिक्स्ड बैग डेटा था। इनफैक्ट आरबीआई के टारगेट रेंज से थोड़ा ऊपर था, बट मार्केट इकोनॉमिस्ट एक्चुअली 3.6 एक्सपेक्ट कर रहे थे, बल्कि उनके एक्सपेक्टेशन से वो एक्चुअली कम आया है। सो इट्स अ बिट ऑफ अ मिक्स्ड बैग। तो सबसे बड़ा ड्राइवर तो हाउसिंग मार्केट था।
अच्छा।
और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एक ऐसी चीज है कि वो स्टेट इंटरवेंशन के बिना कंट्रोल हो नहीं पा रही। नेक्स्ट कैटेगरी इज फूड एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस, जो ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, जूसेस हो गए, ये भी 3.3% इंक्रीज हुए. ये कैटेगरी बेसिकली वी शुड सी ऐसे ब्रॉडली देखनी चाहिए, नॉट जस्ट एज बेवरेजेस, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ग्लोबली भी होता है. इन द सेंस कि ऑस्ट्रेलिया काफी सारा अपना मीट एंड सी फूड एक्सपोर्ट करती है, तो कई बार क्या होता है महंगाई जब बढ़ती है इस कैटेगरी में, तो बहुत सारा डिमांड अगर ऑस्ट्रेलिया के बाहर से आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आर बीफ एंड लैम्ब. अगर बाहर के देशों से बीफ और लैम्ब के लिए डिमांड बहुत ज्यादा है, तो अंडरस्टैंडेबली ऑस्ट्रेलिया में उसकी कमी हो जाती है. तो जब सप्लाई कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ जाते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सटर्नल फैक्टर भी इन्वॉल्व है, नॉट जस्ट डोमेस्टिक. एंड फाइनल कैटेगरी इज ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन. तो ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन में क्या हुआ कि फ्यूल प्राइसेस हैव बीन वेरी वॉलेटाइल, काफी ऊंच नीच हो रही है. तो नवंबर में हमने देखा कि 3.5% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई पेट्रोल प्राइसेस में, और सिर्फ अक्टूबर टू नवंबर में 2.5% इंक्रीज हुआ, विच वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मंथली राइज सिंस जून. सो इसमें भी काफी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि हम अपना फ्यूल एक्सपोर्ट करते हैं. ऑस्ट्रेलिया डज नॉट प्रोड्यूस फ्यूल. तो अगर बाहर कहीं भी कुछ भी डिस्टर्बेंस हो ग्लोबली जिससे फ्यूल प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में फ्यूल के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं. ऑन द फ्लिप साइड आई थिंक सबसे अच्छी चीज जो हमने देखी है, जहां जिसके वजह से प्राइसेस एक्चुअली कंट्रोल में रहे, वो थे सर्विसेज. तो 3.9 से 3.6% हो गया, क्योंकि जो कुछ भी डोमेस्टिक हॉलीडे ट्रेवल्स थे, क्योंकि स्कूल हॉलीडेज रहते हैं अक्टूबर में मोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, तो तभी बहुत लोग ट्रैवल करते हैं. एंड अक्टूबर का वो रश खत्म होते ही नवंबर में जैसे स्कूल्स फिर से स्टार्ट हो गए, तो वो प्राइसेस कम हो गए, क्योंकि लोगों का घूमना कम हो गया, काफी सारे इवेंट्स कम हो गए. एंड मेडिकल सर्विसेज वगैरह भी काफी हद तक एंकर्ड थे, बट दे आर स्टिल अ बिट हायर. द गुड द बेस्ट पार्ट आई थिंक एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगी इज ब्लैक फ्राइडे सेल्स. तो ब्लैक फ्राइडे सेल्स यूजुअली ऑस्ट्रेलिया में बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं. यूजुअली नवंबर इज व्हेन इट पीक्स, बट कई बार काफी सारे रिटेलर्स अक्टूबर से उसको स्टार्ट कर देते हैं. तो इंटरेस्टिंगली इस बार क्या हुआ, लास्ट ईयर तक ब्लैक फ्राइडे सेल्स के टाइम पे महंगाई बहुत बढ़ती थी, बट इस बार वैसा नहीं हुआ, क्योंकि जो भी डिस्काउंट्स ऑफर किए गए दे वर वेरी सिमिलर टू पिछले साल क्या हुआ. एंड उसके वजह से लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इन गोइंग आउट एंड स्पेंडिंग टू मच मनी, कि भले ही ब्लैक फ्राइडे सेल्स शुरू रहे, बट जो हम कंज्यूमर्स थे वो काफी स्मार्ट थे. दे रियलाइज कि इतने भी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स नहीं है, सो इट्स नॉट रियली वर्थ स्पेंडिंग दैट मच मनी. तो यू नो बहुत सरप्राइजिंगली ब्लैक फ्राइडे सेल्स होते हुए भी रिटेलर्स वर नॉट एबल टू पुश द सेल्स सो मच. इसके लिए महंगाई ओवरऑल when it comes to the retail sector काफी muted रही है. तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत ही mixed bag था inflation का इस बार, कुछ categories में बढ़ा कुछ categories में कम रहा, इसलिए broadly काफी sustainable level का रहा, but not clear enough कि RBI ना खुश हो सकती है ना मायूस हो सकती है. ऐसे they'll probably just be thinking कि शायद हमें थोड़ा और रुकना चाहिए.
जी, बहुत बहुत धन्यवाद देविका हमसे जुड़ने के लिए और हमें इन्फ्लेशन रेट पे ये जानकारी देने के लिए.
तो दोस्तों, इस अंश को आप तक लेकर आई नताशा कॉल. चलिए, यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा. लौटकर मैं आपको ऑस्ट्रेलिया में चल रही हीट वेव के बारे में बताऊंगी और इस पर अधिक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगी. सुनते रहें SBS हिंदी. तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ. ब्रेक से पहले हमने नजर डाली आज की खबरों पर और साथ ही हम एक विशेष अंश आप तक लेकर आए, जिसमें हमने इन्फ्लेशन और ब्याज दरों की बातचीत की. वक्त हो रहा है 5:20 और आपको बता दूं कि यदि आप आज के कार्यक्रम में मेरे साथ जरा देरी से जुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारा कोई भी कार्यक्रम या अंश SBS हिंदी के फेसबुक पेज और हमारी वेबसाइट यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर एक बार फिर से सुन सकते हैं। तो गर्मियों का मौसम आ गया है और हीट वेव के चलते हम सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं इस मौसम में अपना ध्यान रखने के लिए, लेकिन हमारे जो पालतू जानवर होते हैं क्या उनके बारे में हमने कभी सोचा है? इस सेगमेंट में सुनिए वेटरिनेरियन डॉक्टर अमीधा लाल को, जो बता रही हैं कि गर्मी के दौरान अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा कैसे की जाए। और उन्होंने ये भी बताया है कि इस मौसम में किन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा ताकि जो हमारे पेट्स हैं वो इस मौसम में अच्छे से इस मौसम को गुजार सके। तो आइए सुनते हैं।
क्या आप जानते हैं कि आपकी तरह आपके पालतू जानवर को पसीना नहीं आता? कभी सोचा है कि क्या आपके पेट्स, चाहे वो डॉग हो या कैट हो या कोई और जानवर, इनको सनबर्न होता है क्या? ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी का माहौल शुरू हो चुका है, तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं ग्रिफिथ वेट हॉस्पिटल की अमृता लाला से, जो कि पेशे से एक वेटरिनेरियन है और बता रही हैं कि कैसे सुरक्षित रखा जाए अपने पेट्स को। डॉक्टर अमृता, एसपीएस हिंदी से बात करने के लिए धन्यवाद। तो सबसे पहले ये बताइए कि पालतू जानवरों के लिए हीट वेव इंसानों की तुलना में ज्यादा खतरनाक क्यों होता है?
जी बिल्कुल, ज़्यादातर हीट वेव्स इंसानों और जानवरों के लिए हानिकारक ही होता है, लेकिन हमारे लिए एक फ़ायदा ये है कि हमें पता होता है कि हमें जब गर्मी लगती है हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम एसी ऑन करते हैं या पंखा चलाते हैं या ठंडे पानी से नहा लेते हैं, हमें पता है हमें क्या करना चाहिए जब हमें गर्मी लगती है, लेकिन जानवरों की बात थोड़ी अलग होती है, स्पेशली पालतू जानवरों की। हमारे मदद के बिना वो ज़्यादातर कुछ कर नहीं पाते गर्मी के अगेंस्ट। और एक और बात मैं कहूँगी कि हमें गर्मी लगती है तो हमारे पसीने छूटते हैं, वो भी हमारे लिए गर्मी से बचने का एक तरीका है, लेकिन जानवरों के लिए ये बात अलग है कि उनके पसीने और जो स्वेट ग्लैंड्स है उनके सिर्फ पंजों में है या सिर्फ नाक में होते हैं, जो हमारे बिल्कुल ही विपरीत है।
डॉक्टर अमृता, अत्यधिक गर्मी में कौन सी नस्लें सबसे ज्यादा जोखिम में रहती हैं, कुत्ते, बिल्ली या कोई और पालतू जानवर?
देखिए, खतरा तो सभी को है, लेकिन छोटे जानवर जो है, जैसे हम उन्हें पॉकेट पेट्स कहते हैं, खरगोश या चूहे, गिनी पिग्स, जो अभी काफी कॉमन हो गए हैं और हमें काफी आजकल दिखने में आते हैं एज पेशेंट्स, इन्हें ज़्यादातर उनकी साइज़ के वजह से, छोटे हैं तो गर्मी भी ज़्यादा लगती है। रही बात कुत्ते और बिल्लियों की, तो बिल्लियों का गर्मी से बचना उनको आता है, वो थोड़े और फुर्तीले होते हैं तो अपने आप को ठंड से, गर्मी से बचा पाते हैं और ठंडा रख पाते हैं। कुत्तों की बात आती है तो जो शॉर्ट फेस्ड ब्रीड्स है, जिनके फेसेस बहुत शॉर्ट होते हैं, जैसे पग्स हैं या फ्रेंच बुलडॉग्स हैं, बॉक्सर्स हैं, इन्हें ज़्यादा तकलीफ होती है गर्मी से, और इन्हीं ब्रीड्स को हम ज़्यादातर देखते हैं गर्मियों में, क्योंकि इन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है नॉर्मली, तो जब गर्मी ज़्यादा होती है तो भी तकलीफ उन्हीं को ज़्यादा होती है। उनके शरीर या नाक का जो आकरण है वो एनाटॉमिकली इनकरेक्ट है, जैसे हम बोलते हैं, तो इसी के वजह से इन्हें ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके अलावा पक्षियाँ, वृद्ध जानवर जैसे 8 या 10 साल के ऊपर वाले कुत्ते या बिल्लियाँ, ये भी बहुत ज़्यादा खतरे में माने जाते हैं।
अच्छा, हमारे पेट्स में हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण कौन से होते हैं?
एक तो है अत्यधिक प्रकार में हाँफना, बहुत ज़्यादा हाँफते हैं ये, सुस्ती है, और उनके शरीर का जो तापमान है वो काफ़ी ऊंचा चला जाता है और हम उन्हें फील कर सकते हैं, जब आप उनके कानों को पकड़ते हो तो काफ़ी गर्म होता है। मसूड़ों का रंग भी देखते हैं हम, एक पिंक कलर होना चाहिए, जो पिंक से कभी कभार नीली हो जाती है या सफ़ेद पड़ जाते हैं तो वो काफ़ी सीरियस माना जाता है। उल्टी करते हैं कहीं बार, और काफ़ी गंभीर स्थितियों में उनको न्यूरोलॉजिकल साइंस भी देखने मिलते हैं, जैसे लड़खड़ाते हैं वो, कांपते हैं, सीजर्स होते हैं, बेहोशी, या दिमाग का जो हम बोलते हैं ना, जैसे दिमागी संतुलन बराबर नहीं है, वैसे साइंस दिखाने लगते हैं, और कोमा तक भी पहुंच सकते हैं काफ़ी गंभीर स्थितियों में। और ज़्यादातर इन स्थितियों में शुरू के लक्षण पेट पेरेंट्स काफ़ी बार नज़रअंदाज करते हैं, जैसे ज़्यादा सोना या सुस्ती, खाना नहीं खाना, हाँफना, ये सभी साइन हीट स्ट्रेस या अलग बीमारियों की शुरुआत हो सकती है और हम सबको इसी का ध्यान रखना चाहिए।
तो ये लक्षण मेडिकल इमरजेंसी कब बन जाती है?
जी, तो जैसे हमने पिछले सवाल में बोला था कि सारे लक्षण पहले जांचें, और अगर आपका जानवर सामान्य से अधिक हाँफ रहा हो या खाना खाने से इनकार कर रहा हो, शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये सब इमरजेंसीज के साइन ही है, क्योंकि इसके आगे अगर गर्मी का असर पड़े तो न्यूरोलॉजिकल साइंस या दिमागी लक्षण जैसे दौरे पड़ना, उल्टी, बेहोशी, कांपना, ये सब शुरू हो जाते हैं और फिर उनका टेम्परेचर नीचे लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इनिशियल साइंस में भी अगर आप अपने वेट के पास ले जाते हैं तो काफ़ी काफ़ी सब कुछ बच सकता है।
जी, अगर हीट स्ट्रोक का शक हो तो वेट के पास जाने से पहले ये पेट ओनर्स क्या कर सकते हैं घर पर?
जी, काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोचते नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए और पैनिक करते हैं। तो गर्मी से होने वाली जो तनाव है या हीट स्ट्रेस है, इससे बचने के लिए अपने जानवरों को तुरंत छांव में लेकर जाएं, उनके नाक को ठंडा करें। तो उनका नाक यूजुअली ड्राई हो जाता है, तो अगर आप उसमें थोड़ा पानी रब करते हो तो वो थोड़ा हेल्प करता है उनको। शरीर का तापमान कम करने के लिए हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे, कोल्ड टॉवल्स डालेंगे या आइस बाथ या ठंडे पानी में भिगो के कपड़े या टॉवल्स डालेंगे, उनके ऊपर डाल सकते हैं। इस समय पे थोड़े थोड़े मात्रों में हम इन्हें ठंडा पानी भी पिला सकते हैं, पंखा चलाएं या एसी ऑन करके इनके बॉडी का तापमान कम किया जाए। और तब भी अगर हीट स्ट्रेस के लक्षण कम ना हो तो डेफिनेटली उसी वक्त अपने वेट के पास लेके जाएं।
अच्छा डॉक्टर अमृता, अब बात करें फुटपाथ की, तो गर्म फुटपाथ यानी सड़कें कितनी खतरनाक होती हैं और ओनर्स इसे कैसे जांच सकते हैं?
जी, फुटपाथ्स की बात, ये काफ़ी सही है कि फुटपाथ्स गर्म होते हैं, और जैसे हम बिना शूज़ के इन फुटपाथ पे चलते हैं तो हमारे पांव भी जल जाते हैं, जानवरों में भी यही होता है। इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि गर्मियों में जब आप अपने पेट्स को या जानवरों को एक्सरसाइज या वॉक्स पर लेके जाते हो तो अर्ली मॉर्निंग्स या लेट इवनिंग्स चुना करें, क्योंकि इस समय हमारे पर्यावरण में उसका एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है या तापमान, इनके लिए काफ़ी आरामदायक माना जाता है। और गर्मियों के मौसम में अधिक एक्सरसाइज ना कराएं तो भी हीट स्ट्रेस कम हो सकता है।
अच्छा, जिन घरों में एयर कंडीशनिंग नहीं है, पेट्स को वहां पर ठंडा कैसे रखा जा सकता है?
जिन घरों में कूलिंग नहीं होती, एसी ना होने पर हम आइस बाथ्स, कूलिंग मैट्स या ठंडे पानी से नहला सकते हैं। ट्रीट्स दे सकते हैं, जैसे आइस क्यूब्स, काफ़ी सारे जानवरों को आइस क्यूब्स काफ़ी पसंद आते हैं, पेट्स, डॉग्स बेसिकली। छांव देना, पंखा चलाना, अंदर कूलर एनवायरनमेंट में रखना, यही सब इन्हीं के लिए काफ़ी होता है। उनकी जो कूलिंग को हम एक्टिव कूलिंग कहते हैं इसे, वो रखने के लिए यही सब काफ़ी है।
जी, अच्छा ये बताइए, क्या पेट्स को भी सनबर्न होता है और क्या इनके फर को शेव करना रेकमेंडेड है?
सनबर्न काफ़ी अच्छी सवाल है ये, क्योंकि ज़्यादातर लोग इनके बारे में सोचते नहीं हैं। सनबर्न जानवरों में भी काफ़ी कॉमन है जितना कि इंसानों में है। ज़्यादातर सफ़ेद या लाइट रंग के डॉग्स या हेयरलेस एरियाज में ये ज़्यादा इफेक्ट करती है, बल्कि ज़्यादा सन एक्सपोजर से स्किन कैंसर भी हो सकती है इन्हें, जैसे कि हमें होती है। और रही बात शेविंग की, शेविंग का भी काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक ब्रीड्स पे डिपेंड करती है शेविंग। नॉर्मली हम कंप्लीट शेविंग एडवाइस नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि इनका फर जो है ये उनके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और फर बहुत अहमियत रखती है इनके लिए।
पारुल मेलबर्न में रह रही एक पेट ओनर है, उनके दो डालमेशियन डॉग्स हैं विंटर और क्लाउड, बता रही हैं कि वो कैसे ध्यान रखती हैं अपने पेट्स का भीषण गर्मी में।
मैं पर्सनली ध्यान देती हूँ इनके हाइड्रेशन पे और प्रॉपर वेंटिलेशन हो जहाँ इनके बेड्स हैं, फैन हो या फिर ओपन खुली हवा हो जहाँ पे इन क्लाउड एंड विंटर दोनों बैठे होते हैं। पर्सनली मुझे ये भी चीज़ बहुत अखरती है जब मैं लोगों को देखती हूँ कि शाम को जब काफ़ी धूप होती है, ये 6-7 बजे भी, और क्योंकि रोड्स एंड पेवमेंट्स, फुटपाथ्स काफ़ी गर्म होते हैं उस टाइम पे भी, उस टाइम पे भी डॉग्स को बाहर ना लेके जाएं क्योंकि बहुत गर्म होते हैं फ्लोर्स. मैं जैसे मॉर्निंग में प्रेफर करती हूँ गर्मियों में उन्हें ले जाऊँ पार्क में या फिर उनकी वॉक्स पे अराउंड 6:30 या 7 o'clock. ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें फ्रूट्स दें, योगर्ट भी बहुत अच्छा है इनके लिए समर्स में. तो हाँ, ओवरऑल हम ऐसे ही इनका ध्यान रख सकते हैं हमारे बेबीज का.
इस अंश में प्रस्तुत की गई जानकारी या विचार सामान्य है. SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत. अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें. तो दोस्तों, इस अंश को आप तक लेकर आएं इति दीवान, और उम्मीद करती हूँ कि ये जो अंश है इससे आपको पेट्स से संबंधित जानकारी मिली होगी कि गर्मी के इस मौसम में हम किस तरह से अपने प्यारे दोस्तों को सुरक्षित और आरामदायक रख सकते हैं. चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटकर सुनेंगे इस बार का ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड, जो कि इसी विषय पर है. सुनते रहें SBS हिंदी. तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ. तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियां बहुत गर्म हो सकती हैं और गर्म होते मौसम के साथ हीट वेव के और ज्यादा तेज होने की उम्मीद की जा रही है. तो हीट वेव के समय कैसे सुरक्षित रहें, यही आपको बताएंगे ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस आने वाले अंश में. लेकर आ रही हैं अनीता बरार.
आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड, SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है.
क्या आपको हीट वेव से यानी लू से होने वाले खतरों के बारे में पता है? अब जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव आम होती जा रही है, उसके खतरों और उससे निपटने के तरीकों के बारे में पता होना आवश्यक है. पूरे ऑस्ट्रेलिया में गर्मियां बहुत गर्म हो सकती हैं और गर्म होते मौसम के साथ हीट वेव के और अधिक तेज होने की संभावना हो जाती है. हीट वेव तब होती है जब दिन और रात में 3 या उससे अधिक दिनों तक तापमान अधिक रहता है, जिससे असहज हालात बनते हैं और ये लोगों की सेहत के लिए असली खतरा होता है. तो ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के आज के इस अंश में बात कि ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव के दौरान कैसे सामना करें, और मैं हूं अनीता बरार. हीट वेव जैसी बहुत अधिक मौसम की घटनाएं अधिक तेज होंगी, जिनका सामाजिक, सेहत और आर्थिक और पर्यावरण पर असर पड़ेगा. ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट सर्विस ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का पहला नेशनल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट जारी किया, जिसमें बताया गया कि गर्म होती दुनिया में हमारे प्राकृतिक खतरे बदल रहे हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में हीट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर के एकेडमिक डायरेक्टर प्रोफेसर ओली जी का कहना है कि ये बदलाव पहले से ही स्पष्ट हैं.
What we're seeing over the last 20 years or so is that the number of heat waves is increasing, the duration of the heat waves are, so they're lasting longer and also they're more severe as well.
हीट वेव खतरनाक होती है क्योंकि पर्यावरण कारक मिलकर हीट स्ट्रेस पैदा करते हैं और इसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है, जो हीट स्ट्रेन यानी लू का दबाव है.
So heat stress is the features of the environment, the temperature which is measured in the shade, the accompanying humidity, whether you're in direct solar radiation or not, and also how windy it is as well. The heat strain is the physiological strain that your body is experiencing.
जब आपके शरीर पर हीट स्ट्रेन पड़ता है तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम है जो जानलेवा भी हो सकता है. प्रोफेसर जी बताते हैं कि हीट वेव में केवल हीट स्ट्रोक ही नहीं है, जिन लोगों को दिल की बीमारी है उन्हें अक्सर हीट वेव के दौरान हार्ट अटैक का खतरा अधिक हो जाता है.
What we see is a big spike in catastrophic cardiovascular events, so people with heart disease, they often are at much greater risk of having a heart attack during a heat wave. So really your body is redirecting all this blood away from the body core towards the skin surface to try to keep you cool. And that places a lot of strain on the heart. At the same time, we sweat a lot in order to try to increase our evaporative heat loss to keep the body cool. So that results in the risk of progressive dehydration, which then aggravates the risk of heat stroke, but also aggravates cardiovascular strain for people who have those issues.
बुजुर्ग लोगों को अधिक खतरा होता है क्योंकि उन्हें पसीना कम आता है. जीपी डॉक्टर मिशेल हमरोजी बताती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव किसी भी प्राकृतिक खतरे से अधिक जान लेती है.
हीट वेव्स आर कॉल्ड अ साइलेंट किलर बिकॉज़ दे स्ट्रेस आवर बॉडीज एंड दे कैन वर्सन क्रॉनिक डिजीजेस. सो पीपल हु हैव ऑलरेडी गॉट अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, हॉस्पिटल प्रेजेंटेशंस इंक्रीसेस सिग्निफिकेंटली फ्रॉम मेंटल हेल्थ कंडीशंस ड्यूरिंग हीट वेव्स, including increased rates of suicide and violence.
Dr. Hamroji batati hain ki heat wave plan hona aavashyak hai. Jaise aapke ghar ka sabse thanda hissa kaun sa hai? Kya aap koi thandi jagah bana sakte hain?
Where is the coolest part of your house? Can you create a cool refuge? And often if that is one room in the house that has an air conditioner, think about also if you don't have access to cooling in your own home, where could you go? Could it be a friend's house, family, library, shopping center? And so it's also really important to plan ahead for a power outage. So things like putting bottles in the freezer, having like little spray bottles, and making sure you keep things like food and medications in the fridge.
जब ठंडी हवा चले तो खिड़कियां खोल देनी चाहिए, तापमान बढ़ने पर उन्हें बंद कर देना चाहिए. जब गर्मी शुरू हो जाए तो घर को ठंडा रखने के लिए एक आसान रूटीन अपनानी चाहिए. प्रोफेसर जे बताते हैं कि सीलिंग फैन उपयोगी तो हैं, लेकिन एक हद तक ही. और डॉक्टर हमरोजी का कहना है कि ठंडक के दूसरे तरीकों में, जैसे कि ठंडे पानी से नहाना, गीले तौलिए, ढीले कपड़े और दिन के सबसे गर्म समय पर अधिक मेहनत वाले कामों से बचना शामिल है.
Can you avoid going out in the hottest time of the day? Because that's where people can run into trouble. If you've got medical appointments, you know, can you turn it into a telehealth so you can avoid going out in the hottest part of the day?
पड़ोसियों और बुजुर्ग रिश्तेदारों का भी हालचाल पूछते रहें. और अगर आप या कोई और बीमार महसूस करे तो ठंडक पहुंचाने के तरीके ढूंढें, जैसे कि थोड़ा और पानी पीना, आसपास ठंडे कपड़े डालना. अगर उन्हें थोड़े समय में आराम नहीं मिल रहा है या लक्षण बढ़ रहे हैं तो जीपी या हेल्थ डायरेक्टर को फोन करें. बच्चों के लिए हल्के कपड़े रखें, बहुत गर्मी वाले दिनों में सिर्फ नैपी ही दें और पक्का करें कि वे अपनी उम्र के हिसाब से सही तरीके से हाइड्रेटेड रहें.
They can also be offered cool baths. A play in water is a really good thing to do during heat waves. And the other really important point is never leave your baby in the car, even just for a short period of time during a heat wave. Babies can really quickly overheat.
अगर आपको बाहर रहना ही है, तो प्रोफेसर जे की सलाह है कि जितना हो सके छाया में रहें. प्रोफेसर जे उनकी टीम ने फ्री ऑनलाइन हीट वॉच टूल भी बनाया है, जिससे लोग personalized heat stress risk assessment कर सकते हैं.
So you can enter in how old you are, what kind of chronic disease you might have, whether you have access to air conditioning. It also knows which postcode you're in, so it draws on freely available weather information. It then gives you an individualized or heat stress score, so it helps you understand what your personal risk is throughout the day, and we give a 7-day forecast as well. We also use it to deliver evidence-based personal cooling advice, and it helps people plan their activities.
ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव आम होती जा रही है, लेकिन तैयारी और जागरूकता से लोग अपना खतरा कम कर सकते हैं और बहुत अधिक गर्मी के दौरान सुरक्षित रह सकते हैं.
ये एक SBS ऑडियो पॉडकास्ट था. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के और दूसरे पॉडकास्ट के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाएं.
तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अंश पसंद आया होगा और हीट वेव से संबंधित जो भी जानकारी है ये आपको मिली हो. चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आज की शाम का आखिरी ब्रेक, और लौटकर आपको कुछ बढ़िया से गाने सुनाऊंगी और आपको मिलवाऊंगी इस साल के NSW हिंदी टॉपर्स के साथ. सुनते रहें SBS हिंदी. तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ. तो न्यू साउथ वेल्स में HSC रिजल्ट सामने आ गए हैं, जिसमें दो सखियों ने हिंदी के विषय में किया है टॉप. आइए मिलते हैं धानी और सानवी से, समझते हैं कि कैसे उनकी दोस्ती ने उनकी मदद की हिंदी सीखने में।
तो दोस्तों, सिडनी के दो दोस्तों ने इस साल HSC हिंदी में टॉप किया है और उनके लिए ये सफर सिर्फ उनके मार्क्स यानी अंकों तक सीमित नहीं रहा है। आज हम बात कर रहे हैं सानवी से और धानी से और उनसे जानेंगे कि ये जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के उनकी क्या भावनाएं हैं और HSC हिंदी से जुड़ी कुछ ऐसी क्या गलत फहमियां जो उन्हें लगता है कि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उनके आपस के जो सामंजस्य है उसने इस रिजल्ट में उनकी कैसे सहायता करी, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो धानी और सानवी, आपका बहुत स्वागत है SBS हिंदी में।
धन्यवाद।
तो आप दोनों, सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि जो रिजल्ट का दिन था जब आपने अपने HSC हिंदी के मार्क्स देखे तो आपको कैसे लगा, और सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा था आप लोग का?
नेसा से फोन आया था और उन्होंने मुझे फोन पे रिजल्ट बताया था और मुझे लगा नहीं था कि वो रिजल्ट आएगा, पर जब मैंने सुना तो मैंने सबसे पहले जाकर अपनी माता को बताया और मैं बहुत खुश हुई थी उस दिन, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अलग था और मुझे नहीं लगा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। जब मैं अपने बस पे बैठी थी तो मैंने खोला और जो क्लास था हिंदी का उसमें सब लोग बात कर रहे थे रिजल्ट्स के बारे में, तो फिर मुझे याद आया कि मेरे भी आए थे रिजल्ट्स, तो फिर जब मैंने चेक किया तो मैं बहुत खुश हुई, परंतु उस समय मुझे अपनी रैंकिंग नहीं पता था तो मैं थोड़ी तनाव में थी, परंतु तब भी मैं बहुत खुश थी और मैंने मम्मी पापा को फिर फोन लगाया, उनको बताया तो वो भी बहुत खुश हुए। तो हाँ जी,
और आप दोनों केवल टॉपर्स नहीं हो, जैसे कि हमें पता है कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हो, तो आपकी जो फ्रेंडशिप है, ये जो दोस्ती है, उससे आपके जो ये पूरा रिजल्ट आया है आपकी पढ़ाई में, उससे कैसे मदद हुई?
हम लोग ओरल एग्जाम के लिए और लिखित एग्जाम के लिए साथ में पढ़ते थे और हम रोज जैसे फोन करते थे और घंटों हम लोग रात को 2-2 बजे तक साथ में बैठ के पढ़ते थे, और जैसे कभी मुझे डर लगने लग जाता था तो सानवी मुझे बढ़ावा देती थी कि अच्छा होगा, चिंता मत करो, और थोड़ा करते हैं, और जब उसे चिंता होती थी तो मैं ऐसे करती थी, और जब हमारा पढ़ने का मन नहीं होता था तो साथ में पढ़ते थे तो थोड़ा ज्यादा मजा आता था उसमें, और हमारे बीच में ये बात चलती थी कि हाँ हमें अच्छा करना है, परंतु हमारा ऐसा नहीं था कि अगर जैसे उसके मुझसे ज्यादा आते या मुझे मेरे उससे ज्यादा आते तो हमें ऐसे फर्क नहीं पड़ता, हम चाहते थे कि हम सभी अच्छा करें।
तो सानवी, आपसे शुरू करते हैं, मुझे ये बताओ कि कई लोगों को ऐसे लगता है क्योंकि घर पर हिंदी में बात होती है तो हिंदी का एग्जाम लिखना आसान काम हो सकता है, लेकिन HSC हिंदी की कौन सी ऐसी सबसे बड़ी चीज है जो आपको लगता है यार इतना बड़ा मिथ है, किसी को पता ही नहीं है?
जी, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलतफहमी तो ये है कि वो कठिन है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, और वो सत्य है, पर मुझे लगता है कि जब आप अपने, जैसे मैंने धानी के संग पढ़ाई की थी, तो जब हम अपने मित्रों के संग लगते हो और तो वो और आसान हो जाता है।
जी, और धानी, व्हाट डू यू हैव टू से, आपको क्या कहना है?
जब हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे तो हमारी अध्यापिका जो हमें ओरल के बारे में बता रही थी तो मुझे उसके लिए बहुत तनाव हो रहा था, क्योंकि उसमें अगर आप अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो आपके मार्क्स काट लेते हैं, पर जब मैं ओरल में गई थी तो जो अध्यापक थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, और वो काफी आराम से आसानी से गया, उतनी चिंता की वो बात नहीं थी जितनी मुझे लग रहा है।
सिलेबस का कौन सा ऐसा पार्ट था जो आप दोनों के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा?
आई थिंक लिसनिंग। हाँ हाँ जी, मैं इस बात से सहमत हूँ, वो और जो हमारा ओरल जो हिस्सा था वो भी बदल गया था।
हाँ,
तो जब वो बदल गया था तो हम बहुत ज्यादा तनाव में आ गए थे, परंतु जब हमने बैठ के जब हमने परिश्रम किया तो मुझे लगता है कि इसमें मेरे अच्छे अंक आए हैं।
तो लिसनिंग वाले सेक्शन के बारे में थोड़ा सा और बताओगे, उसमें क्या होता है?
लिसनिंग वाले सेक्शन में वो हिंदी भाषा में आपको एक टेक्स्ट सुनाते हैं और आपको कुछ क्वेश्चन अंग्रेजी भाषा में आंसर करने होते हैं और कुछ हिंदी में आंसर करने होते हैं, परंतु उसमें कभी कभी वो बहुत तेज बोलते हैं या ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो ना हमें समझ आते हैं या हमारी डिक्शनरी में भी नहीं होते, तो उसमें आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है और उसमें आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो ही वो एक ऐसी चीज है जो बेहतर होगी।
अगर मुझे आपसे कहना हो कि एक चीज ऐसी बताओ आप दोनों लोग जो आपको लगता है कि तैयारी के समय आपने एकदम सही की, जो बाकी दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, दूसरे जो छात्र हैं, उनकी मदद कर सकती है, तो वो क्या होगी?
जब मैं पुनः दोहरा रही हूँ, जब आप अपने मित्रों के संग करते हो तो आप और प्रेरित होते हो, क्योंकि आपके जो मित्र होते हैं, कभी कभी जैसे मैं दुखी हो जाती थी कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी, या कभी कभी ध्यान ही तनाव में आ जाती थी, तो हम जब दोनों एक दूसरे को प्रेरित करते हैं तो हम और अच्छा करते हैं और ज्यादा हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो HSC हिंदी या कोई भी HSC या कोई भी एग्जाम हो, अगर आप अपने मित्रों के संग कर पाओ तो आपको करना चाहिए। जो लोड होता है वो आप शेयर कर सकते हो और इससे आपका समय भी बचता है, क्योंकि सामी जैसे याद है जब हम ओरल के लिए पढ़ रहे थे, मैं आपको कहती थी कि आप कुछ अच्छे शब्द ढूंढे और मैं कुछ अच्छे शब्द ढूंढती और हम साथ मिलकर उन्हें लिखते थे, तो इससे हमारा समय भी काफी बच जाता था।
अच्छा, अब एक बड़ा अलग सा सवाल पूछना है मुझे, आप लोगों को हिंदी पढ़ते वक्त कैसे ऐसा लगा कि, या ऐसा लगा भी कि नहीं, कि आपका जो अपना कल्चरल आइडेंटिटी है उससे आपका जो रिलेशनशिप है, क्या वो चेंज हुआ कि आप अपने कल्चर को, अपने समुदाय को, अपने हिस्ट्री को थोड़ा बेहतर समझ पाए उससे?
जी, मुझे लगता है कि भाषा के माध्यम से मैं और अपनी संस्कृति से जुड़ पाए, क्योंकि जो भाषा होती है वो ऐसा एक धागा होता है जो हमें कोई किसी से भी जोड़ सकता है। तो जैसे जब मैंने और हिंदी पढ़ी, तो जैसे मैं पिछले वर्ष भारत गई थी, तो मैं अपने मेरा परिवार रहता है भारत में, उनसे मैं और जुड़ पाई अच्छे से। और जैसे मेरी जो दादी जी है, वो मुझे बहुत सारी कहानियां बताती हैं, तो उनको मैं और बेहतर समझ पाई, अपने संस्कृति से और जुड़ पाई। तो मुझे लगता है कि भाषा एक बहुत अति आवश्यक चीज है, और वो भी विशेष रूप से मातृभाषा आपकी।
मैं सानवी से की बात से सहमत हूँ, और हम जब कक्षा में पढ़ते भी थे वो हमें अपने देश के इतिहास, अपनी भाषा के बारे में कई चीजें बताती थी, और इससे हमारा अपने देश के प्रति ज्ञान भी बढ़ता था। और जो हमारी अध्यापिका थी वो हमें कहती थी कि आप अपने खाली समय में भी भारत के न्यूज पढ़िए, और अपने आप को करंट अफेयर्स जो भारत के हैं उनके बारे में जानकारी रखिए, भारत के इतिहास में जो जरूरी दिन है जैसे कि हमारा स्वतंत्रता दिवस, ऐसी चीजों के बारे में जानकारी रखने को भी वो हमें कहते थे, और जिससे हमारी भारत के बारे में ज्ञान काफी बड़ा था।
कौन सी हिंदी की ऐसी किताबें हैं जो आप दोनों की फेवरेट हैं? हम शुरू करते हैं सानवी के साथ और फिर धानी से पूछेंगे। तो सानवी, हिंदी साहित्य की कौन सी ऐसी किताबें या कोई कविता हो जो आपको बहुत अच्छी लगती हो?
मैं सत्य बोलूंगी तो मैं इतनी हिंदी की जो साहित्य है वो नहीं पढ़ती हूँ, परंतु मेरा जो हिंदी स्कूल था तो उसमें हम हर वर्ष हमारा जो कविता का एक प्रतियोगिता होती थी, तो उसमें पिछले वर्ष जब मैंने भाग लिया था तो मैंने सीखी थी कविता, उसका नाम था कृष्ण की चेतावनी, और बहुत पसंद आती है क्योंकि वो मुझे अपने जो धर्म है उसके तरफ भी और मुझे और जानकारी देती है।
और धानी, आपके लिए?
मेरे लिए एक छोटी सी कविता है झांसी की, झांसी वाली रानी पे, और सामी को याद होगा ये कविता मैंने अपने ओरल के परीक्षा के लिए याद की थी, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मैंने उसको बहुत बार सुनाई है। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है झांसी वाली रानी, वो मुझे बहुत पसंद है।
थोड़ी सी सुनाओगे हमें अगर याद है तो?
हाँ जी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
बहुत सुंदर हां। और कृष्ण की चेतावनी याद है थोड़ी सी सानवी, सुना पाओगे?
जी, मैं थोड़ी सी जो मुझे याद है, मैं
चार लाइनें, बहुत सारी है।
वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है।
बहुत सुंदर। और मुझे ये बताओ कि अब जब आपने 12th कर लिया है, ईयर 12 हो गया है, आगे भविष्य में आप कहाँ देखते हो कि हिंदी आपके लिए एक हिस्सा बन रही है?
मैं आगे चलकर एक चिकित्सक बनना चाहती हूँ और मुझे लगता है हिंदी मुझे भारत में लोगों से जुड़ने में मदद करेगी ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊँ। और यहाँ पर भी जिस भी कार्यालय में मैं काम करूँगी वहाँ पर मैं हिंदी भाषा के माध्यम से लोगों से जुड़ पाऊँगी, क्योंकि जब आप किसी से उनकी मातृभाषा में बात करते हैं तो आपका जो संबंध होता है वो अलग ही होता है।
जी मुझे भी चिकित्सक बनना है परंतु मुझे और भी बदलाव लाने हैं समुदाय, जैसे मेरे आयु के जो बच्चे हैं जो अब जैसे 15-16 साल के या मतलब टीनेजर ईयर्स में, मुझे उनको और अपनी संस्कृति और भाषा की तरफ और उनको जोड़ना है। तो अगर मैं तो उसके लिए तो मैं स्वयं मुझे स्वयं हिंदी बोलना आना चाहिए और हिंदी ताकि मैं उनको भी दिखा पाऊँ कि हमें हिंदी सीखनी चाहिए और उससे हम अपनी संस्कृति से जुड़ सकते हैं।
आप दोनों आज हमसे जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद आपका भी।
धन्यवाद।
तो दोस्तों इस अंश को आप तक लेकर आई थी विशाली जैन। और छोटे छोटे बच्चे जो कि अब अपनी 12वीं कक्षा से आगे बढ़कर कॉलेज में जाएंगे, हिंदी की परीक्षा उन्होंने दी और इतने अच्छे अंक लेकर आए हैं। ये आपने सुना धानी और सानवी को, उनके भविष्य के लिए SBS हिंदी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज आपके ज्यादा संदेश मेरे पास नहीं आए हैं, लेकिन एक संदेश मेरे पास आया है पराग मोदी जी की ओर से, जो कि लिखते हैं, हाय भव्या जी, वेरी गुड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेट केयर ड्यूरिंग द हीट वेव, लॉट्स ऑफ गुड यूजफुल इन्फॉर्मेशन बाय डॉक्टर अमृता एंड इट इज क्वेश्चन वेर वेरी रेलिवेंट। तो मोदी जी, पराग मोदी जी, आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और काफी अच्छा लगता है ये जानकर कि जब भी हम किसी अलग या डिफरेंट टॉपिक के ऊपर कोई अंश लेकर आते हैं तो आप लोगों को वो चीजें बहुत पसंद आती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए आपसे इजाजत लेना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो कार्यक्रम था वो आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से आप सभी का SBS हिंदी के साथ और मेरे यानी भव्या पांडे के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मुलाकात फिर से होगी नई खबरों के साथ, नए गानों के साथ।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।